يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ دگنے سے دگنا کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے سود کے موضوع کی دوسری آیت ہے. اس سے پیچھے سورۃ بقرہ کی 6 آیات ہم کر چکے. اب اگر ہم اس آیت کو دیکھ لیں تو در حقیقت اس میں اس معاشرے کے ایک معروف طریقے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور وہ کیا تھا کہ جاہلیت میں سود خوری جو تھی عام تھی، اور ایک کے بعد دوسرا سود دیتے تھے، یعنی جس کو آج کی زبان میں مرکب سود یا کمپاؤنڈ سود کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سے منع کر دیا کہ لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ سود. یہاں بھی لفظ ربا آیا ہے اور پیچھے بھی تھا، تو ضروری ہے کہ اب ہم تھوڑی سی بات اس کے لفظوں پہ بھی کریں. ربا کا لفظ جو ہے را با اور واو سے ہوتا ہے، یا سے بھی آ سکتا ہے. ربوا کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس لفظ کو سمجھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں بہت مدد ہوگی. ربوا کہتے ہیں بلندی کو، ٹیلا، کسی چیز کا ابھار، جیسے گلٹی ہوتی ہے نا. اب ہم سب اگر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم بچپن میں کیسے تھے اور اب کیسے ہوئے، ہاتھ چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے. یعنی نارمل گروتھ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. لیکن اسی میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک چھوٹی سی گلٹی بن جاتی ہے، گروتھ اس کی بھی ہو رہی ہے لیکن وہ گلٹی ہمارے ہاتھ کو بڑا نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے ہاتھ کے اوپر ایک ایکسٹرا چیز بن رہی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ لفظ ربا کی اصل سے سمجھ سکتے ہیں کہ سود. سود کا لفظ اردو میں ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں، اور اس لفظ سے بھی اس کے بارے میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں. سود کا لفظی معنی ہوتا ہے کالا، بلیک، اسود کالے کو کہتے ہیں، بہت کالا سیاہ. تو شاید یہ پھر بلیک منی کی طرف اشارہ ہے، اس کی گندگی کی طرف اشارہ ہے. انگلش میں دیکھ لیجئے تو انٹرسٹ کہتے ہیں، اور بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے یہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ سود کا لین دین یا معاملات کو کرتے ہیں وہ صرف لفظ انگلش پہ ہی غور کرتے ہیں، ورنہ عربی کا لفظ دیکھ لے تو ایک ایسا اضافہ ہے جو اصل مال کے اوپر اس طرح، یہ دیکھیے تہ بہ تہ، ایک سمجھیں کہ یہاں پہ گول چیز تھی، اس کو بڑھنا یوں چاہیے تھا کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس کا ریڈیس بہت بڑا ہوتا ہے، جیسے روٹی پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے، یہ عام روٹی ہے. لیکن ربا کا لفظ کیا ہے کہ اس گول چیز کے اوپر اب ایک چیز لگتی جا رہی ہے تہ تہ، اور ہوتے ہوتے وہ ایک چھوٹی سی ڈھیری بن جاتی ہے. تو سود جو ہے نا، یہ کینسر کی گلٹی ہے. جو لوگ سائنس کی زبان جانتے ہیں، کینسر کیا ہے؟ آپ کے سیلز کی ارریگولر گروتھ، آپ کے جسم کے اندر صحیح گروتھ ہونے کی بجائے ایک ہی جگہ پہ آپ کا سیل بڑھتا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ دوسرے سیلز کا سارا اثر چوستا ہے اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. بہرحال اس لفظ کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ مال بہت بڑھ رہا ہے، مال کا ڈھیر لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت جو اصل مال ہوتا ہے نا، اس کا بھی خون نچوڑ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ سود نہ کھاؤ. جہاں لفظ سود آتا ہے فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور ایک احتجاج آتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے اور اس میں تو ہر چیز پہ پابندی ہے، اور اسی طرح اسلام نے سود کو بھی حرام قرار دیا. بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے سود کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی سود حرام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی اس میں بھی سود حرام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہی چیز انجیل کی صورت میں آئی اس میں سود حرام ہوا، اور اس سب کے دلائل موجود ہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچی، मक्का वालों के पास, तो अरब माशरा जो था वो पूरे का पूरा सूद पर चल रहा था। इतना ज़्यादा इसका रिवाज था कि ऐसे लगता था कि इसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। मुख्तलिफ तरीके से लोग ये मामला करते थे, लेकिन जब 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने रिबा की आयतों के ज़रिए से हुरमत कर दी, तो सहाबा कराम जो थे उनको 1 मिनट भी नहीं लगा इस बात को समझने में कि ये अल्लाह की तरफ से पसंदीदा मामला नहीं है, और उन्होंने इसको छोड़ दिया। कुरान पाक में तकरीबन 8 से 9 आयात हैं जो सूद के बारे में हमें अल्लाह ताला का हुक्म बताती हैं, जिसमें सूरत बकरा की आयात हैं, और उसके बाद सूरह आल इमरान की ये आयत जो भी हमने देखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफ़ मुदाअफ़तन वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसमें मना कर दिया कि सूद दर सूद ना करो, मुरक्कब सूद ना करो। फिर इसके बाद सूरत निसा में भी 2 आयतें हैं सूद के बारे में, आयत नंबर 160 और 161, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूद की तरफ निस्बत करते हुए कहा कि फबी जुल्म मिनल्लज़ीना हादू, यहूद के इन्हीं बड़े बड़े जरायम के सबब हमने बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो इनके लिए हलाल थी इन पर हराम कर दीं, और इस सबब से कि वो बहुत सारे लोगों को हिदायत के रास्ते से रोकते थे, और बसबब इसके कि वो सूद लिया करते थे हालांकि इनको इससे रोका गया था, और बसबब इसके कि वो लोगों का माल नाहक तरीके से खा जाते थे, और हमने इन लोगों के लिए जो काफिर हैं दर्दनाक सज़ा का सामान मुकर्रर किया है। इन आयात में ख़ास तौर पे यहूद पे तनकीद की गई कि इनकी शरीयत में भी सूद हराम था, लेकिन इन्होंने बाकी चीज़ों की तरह इस हराम को भी हलाल करार दिया। इसके अलावा सूरत रूम के 4थे रुकू की आयत नंबर 39 जो है, उसमें भी सूद का तस्करा है, गो के इस आयत के बारे में कुछ कहते हैं कि ये वाकई सूद के बारे में, और बाज़ उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी रखते हैं। आयत क्या है? वमा आतई तुम रिबा, और जो चीज़ तुम इसलिए दोगे कि वो लोगों के माल में पहुँच कर ज़्यादा हो जाए, तो ये अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ती, और जो ज़कात तुम दोगे जिसे अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के पास बढ़ाते रहेंगे। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने सूद और सदक़े का तकाबुल किया, और हकीकत यह है कि सूद सदक़े का अपोज़िट है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ मेंटेलिटी है, सोच भी फ़र्क है, उसमें एक दूसरे की मोहब्बत है, इसमें एक दूसरे का खून निचोड़ना है और पीना है। पूरे कुरान पाक के अलावा तकरीबन 40 के करीब रिवायात जो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान अथर से निकली और हम तक पहुंची, जिसमें सूद की हुरमत बयान की गई। चंद आयतें सिर्फ इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस बात को कुरान के बाद सुन्नत की रोशनी में समझने की तौफीक अता फरमाए आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे हवाले नहीं, सिर्फ खुलासा दूंगी ताकि आप इस वक्त इस बात को नोट कर सकें अगर आप करना चाहें, और अगर किसी को डिटेल चाहिए तो हर एक की हदीस की जो किताब है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। एक पहली रिवायत जो सही बुखारी और मुस्लिम की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा किराम ने पूछा कि वो क्या हैं, तो उन 7 में से 4थे नंबर की चीज़ जो थी आपने फरमाया कि सूद खाना। दूसरी रिवायत सही बुखारी ही की है, आपने फरमाया कि आज की रात 2 लोगों को मैंने देखा जो मेरे पास आए और मुझे बैतुल मक़दस तक ले गए, फिर हम आगे चलते गए, और मैं इशारतन बता दूं कि ये वाकया मेराज की तरफ इशारा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लम मेराज के लिए गए तो 2 फरिश्ते आपके पास लाए गए थे, और उन्होंने नबी सल्लम को बैतुल्ला से लेकर बैतुल मक़दस तक ज़मीन का सफ़र करवाया था, और इसको असरा कहते हैं, और इसके बाद फिर अगला सफ़र जो था वो बैतुल मक़दस से आसमान का था। तो जब अल्लाह के नबी सल्लम इस ज़मीनी सफ़र में थे तो रास्ते में कुछ मनाजिर दिखाए गए थे, जन्नत और जहन्नम के, और कुछ पिछली कौमों की चीज़ें दिखाई गई। उन्हीं में से एक चीज़ आपने बयान की कि हम चलते गए तो देखा कि एक खून की नहर है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी उसके किनारे पर खड़ा है। जब ये नहर वाला आदमी इससे बाहर आना चाहता है तो किनारे वाला आदमी इसके मुंह पर पत्थर मारता है, जिसकी चोट से भागकर वो फिर वहीं चला जाता है जहां खड़ा था, फिर वो निकलने का इरादा करता है, फिर ये यही मामला करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने साथियों से पूछा कि ये क्या माजरा है, यानी फरिश्तों से पूछा कि ये कौन है, जो मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि खून की नहर में कैद किया हुआ आदमी सूद खाने वाला है और ये अपने अमल की सज़ा पा रहा है। और इसी मौके पे एक और रिवायत में मिलता है कि आपने देखा शबे मेराज की रात जब आप सातवें आसमान पर पहुँचे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने ऊपर रात और बर्क को देखा। फिर इसके बाद हम एक ऐसी कौम पर गुजरे जिनके पेट रिहायशी मकानात की तरह फूले हुए और फैले हुए, यानी बड़े बड़े मटके जैसे होते हैं या बड़े बड़े घर हैं, उस तरह कुछ लोगों के पेट फूले हुए हैं और इसके अंदर सांप भरे हुए हैं जो बाहर से नजर आ रहे हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं, उन्होंने फरमाया ये सूदखोर हैं। और ये रिवायत मुस्नद अहमद की है। एक और रिवायत, क्योंकि अभी तक की जो रिवायतें हैं इससे कुछ लोग ये शुबा पेश करते हैं कि ये तो सूद खाने की बात है, खिलाने की तो है ही नहीं। भाई सूद खाते थोड़ी हैं, और अगर मजबूरन हमें देना पड़ता है तो हम तो उसमें नहीं हैं। तो ये रिवायत भी नोट कर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाले पर और सूद देने वाले पर और उसकी गवाही देने वाले पर और उस मामले को लिखने वाले पर अल्लाह की तरफ से लानत है। आखिलुहू व मुखिलुहू, खिलाने वाला खाने वाला, कातिबुहू व शाहिदुहू। सही मुस्लिम में ये रिवायत है और उसमें ये अल्फाज भी हैं कि ये सब के सब गुनाह में बराबर है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं कि कहाँ ये बात आती है। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया चार आदमी ऐसे हैं कि इनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम किया है कि इनको जन्नत में दाखिल ना करें और जन्नत की नेमत ना चखने दें। अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करें, पहले से ही दुआ कर ले। और वो चार ये हैं, हमेशा का शराब पीने वाला यानी शराब पीने का आदी, और सूद खाने वाला, और यतीम का माल नाहक तरीके से खाने वाला, और अपने वालदेन की नाफरमानी करने वाला। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। और इससे भी ज़बरदस्त रिवायत, आपने फरमाया जो आदमी सूद का एक दिरहम खाता है वो 36 यानी 36 टाइम्स बदकारी करने से यानी जिना करने से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। कोई 36 दफ़ा जिना करे तो उससे बड़ा गुनाह है सूद खाना। और बाज़ रिवायतों में आता है कि जो गोश्त माले हराम से बना है उसके लिए आग ही ज़्यादा मुस्तहिक है। मैं कोशिश भी करती हूँ कि ऐसे मौजू पे बात अपनी कमी करूँ और हवाले से बात कर दी जाए, ताकि कोई ये ना सोच ले कि शायद ये किसी कहने और सुनने वाले के अपने ख्यालात या अपने नज़रियात हैं। और अल्लाह ताला हमें कभी भी दीन के अंदर कोई ऐसी बात शामिल करने की तौफीक ना दे जो अल्लाह की तरफ से नहीं और हम अपनी तरफ से उसको शामिल करें। जी रिवायत है इब्ने माजा की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद की 70 किस्में हैं और इनमें से सबसे हल्की किस्म ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। अल्लाह अकबर, सबसे हल्के दर्जे का सूद है ये। फिर इसी तरह एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स भी सूद से ज़्यादा माल जमा नहीं करता बल्कि इसका इंजाम तंगदस्ती होता है। ये इब्ने माजा की रिवायत है। फिर इसी तरह एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में बदकारी और सूद आम हो जाए तो इसने अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर दावत दी। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। कभी भी कहीं कोई ऐसी आफत आती देखें तो फिर ऐसी रिवायतों को याद रख सकते हैं हम उस वक्त। फिर एक रिवायत में आपने फरमाया कि सूद के लेन देन का रिवाज हो जाए तो अल्लाह ताला इन पर ज़रूरत की चीज़ें महंगी कर देता है, और जब किसी कौम में रिश्वत आम हो जाए तो दुश्मनों का रोब और गलबा इन पर हो जाता है। आज ये सारी चीज़ें, महंगाई है और दुश्मनों का रोब है, तो ये सारों की वजह अल्लाह के नबी ने बताई। मुस्तद अहमद की यह रिवायत है। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है, तबरानी की यह रिवायत है औफ बिन मालिक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन गुनाहों से बचो जो मुआफ़ नहीं किए जाते, उनमें से एक माले गनीमत की चोरी है और दूसरे सूद खाना। आपने फरमाया जिस शख्स को तुमने कर्ज दिया हो इसका हदिया भी कबूल ना करो, यानी ऐसा ना हो कि इसने ये हदिया कर्ज के एवज में दिया हो जो सूद है, इसलिए इसके हदिये को कबूल करने में एहतियात करो। आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि किसी शख्स ने अगर इनका कर्ज देना होता था, यानी इन्होंने कर्ज दिया था और वापस लेना होता था, तो उसकी दीवार के साए में भी नहीं बैठते थे कि कहीं ये भी सूत ना हो जाए, क्योंकि असल के ऊपर इजाफा जो है असल में वही जो है सूत की कहानी बनती है। तो सूत को अल्लाह ताला ने इतना कभी फेल कहा, इसके बावजूद क्या वजह है कि बहुत सारे लोग इसको समझना नहीं चाहते या समझते नहीं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक अमूमन माल के साथ होता है। और इन्नल इंसान लिखुब्बिल खैरी लशदीद, बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बहुत ही शदीद है। बस लोग कहते हैं कि देखो इससे कितनी फलाह होती है, जिन मुल्कों में ये निज़ाम है वो दिन रात तरक्की कर रहे हैं और उनके पास तो बहुत कुछ है। तो मैं एक छोटी सी आपके साथ मिसाल शेयर करूंगी, आप उससे फ़ायदा उठाएं। बिलफर्ज दो बस्तियां हों, कोई दो टाउन्स हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, एक बस्ती में भी कुछ लोग रहते हैं दूसरी में भी रहते हैं, बस ये एक जनरल बात थी। कुछ अरसे के बाद कोई शख्स उनमें से एक बस्ती में जाए और देखे कि वहाँ के लोग खूब मोटे ताज़े हैं, बहुत सेहतमंद हो गए, क्या सोचेगा? कि ये बहुत तरक्की कर गए या बहुत इनके अंदर ताकत आ गई। लेकिन उसके बाद जब उस बस्ती से निकलकर दूसरी बस्ती में जाए तो जो वहाँ के लोग थे ना उनकी हड्डियाँ निकल आईं या वो मुर्दा हुए। पूछा गया ये क्या है? तो वो कहें कि वो दूसरी बस्ती के जो लोग थे ना वो आदमखोर थे और वो इन सब का खून पी गए। तो अब बताइए कि इस दूसरी बस्ती के लोगों को देखकर पहली बस्ती के लोगों को आप सेहतमंद लोग कहेंगे? कभी भी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ये तो कुछ का खून पी के अगर दूसरे मोटे हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ, ये तो ऐसी है कि आप अपनी एक चीज़ ख़राब करके दूसरी ठीक कर लें तो क्या खुशी हुई। सूदखोर का मामला ये पहली बस्ती वालों का है, ये अपने इर्द गिर्द वालों के खून को निचोड़ते हैं। और अगर वो बज़ाहर मोटे हो भी जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि उससे वो खैर नहीं फूटती। अगर आज आप दुनिया के नक्शे पे एक निगाह डालें तो आप देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में दो किस्म के गिरोह बन चुके हैं, एक बड़ी ताकतों का गिरोह है और दूसरा एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का गिरोह है। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करके देखें ना तो आपको इस सारी चीज़ों के पीछे कि चंद लोग बड़ी ताकतें बन के दूसरों के मुकद्दर के फैसले क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है कि बड़ी ताकतों से कर्जे लेकर एक चीज़, एड लेकर गरीब या थोड़े से जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो कर्जे ले चुके हैं, अब वो उनके कर्ज़ों में दब के उनके रूल्स और उनके कवानीन को मानने पर मजबूर है। ये सच है? आप ये कह सकते हैं कि सूद मॉडर्न दौर की या करंट दौर की स्लेवरी है। माजी में गुलामी होती थी इनफरादी दर्जे की, एक शख्स दूसरे को खरीद लेता था, 10,000 दिरहम दिए, 5 दिए, जो भी दिए। अब जब वो गुलाम उसके घर आ जाता था ना तो वो गुलाम उसकी मलकियत होती थी, वो कुछ कमाएगा तो भी मालिक को मिलेगा। इस्लाम ने कैसे कानून बनाए कि बिलाखिर गुलामी ख़त्म हो गई अल्लाह की तौफीक से। आज के दौर में कौमों की गुलामी है, मुल्क की सतह पे गुलामी है, जैसे वहाँ खरीदते थे यहाँ भी खरीदते हैं, ये एक पूरा जाल है। पहले ऐसे लोग जिन मुल्कों को ये अपना निशाना बनाते हैं उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना उसको कट डाउन करते हैं। अगर आप थोड़ी सी ज्योग्राफी जानते हैं तो कुछ मुल्क हैं जो ऐसे मुल्क कहलाए जाते हैं जिनका नाम सुनते ही गुर्बत जहन में आती है, मसलन अफ्रीका, युगंडा, घाना, ये ऐसे सुनते हैं ना नाम। सिर्फ इन मुल्कों की अगर आप हकीकत जाके देखें ना तो इसमें एक मुल्क है जिसको घाना कहते हैं, शायद आपने कभी इसका नाम पढ़ा या सुना हो, इंतहाई सरसब्जो शादाब मुल्क है। उसके अंदर कहते हैं कि ईंट उठाए ना तो उसके नीचे से सब्जा निकल आता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ 50% बच्चे जो है ना फूड की कमी, गजा की कमी का शिकार है, मजबूर हैं। क्यों? कि खाने के लिए कुछ है नहीं। ये कैसे हो सकता है, एक मुल्क इतना फर्टाइल है, वहाँ इतनी जरखेजी है और वहाँ रहने वालों की गजा की मकदार ही नहीं पूरी हो रही, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उस मुल्क को अपनी ज़मीनों पे फूड क्रॉप को प्लांट करने की इजाज़त नहीं है। फूड क्रॉप क्या होती है? खाने की चीजें जैसे चावल, अनाज, गल्ला, जिसको फौरन आप उतारें और चलें घर घर जाके खा सकते हैं ना, फसलें जिसको कहते हैं, क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज कह लें, अजनास कह लें, उनको इसकी इजाजत नहीं, बल्कि उसकी जगह उनको फोर्स किया जाता है कि आप कैश क्रॉप उगाएं। कैश क्रॉप क्या होती है कि जिसको बेच के फौरन पैसे ले लें। इसलिए उस मुल्क में कोका, जिससे बाद में चॉकलेट बनता है, वो उगाया जाता है। अब वो बच्चे जो 50% जो खाने की कमी का शिकार है, वो कोका पाउडर से तो पेट नहीं भरेंगे ना। नतीजा क्या होता है कि उन मुल्कों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने मुल्क की भूख खत्म करने की बजाय हमारे लिए ऐसी चीजें प्लान करें कि जिसके बाद दोबारा हमारे पास माल आ जाता है। इसी तरह युगंडा के बारे में एक ये रिपोर्ट है जिसके अंदर से कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। युगंडा में आता है कि 20% 20% बच्चे जो हैं वो 5 साल से पहले फौत हो जाते हैं। क्यों? कि उनकी सेहत के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वो माल कहाँ जाता है? उनके बहुत सारे जो एसेट्स है ना, वो गैर कौमों को कर्जे अदा करने में चला जाता है। इसी तरह अफ्रीका के बारे में आता है कि वहाँ का बच्चा बच्चा इतने कर्ज के अंदर आ चुका है कि अगर उनमें से हर फर्द अकेला अकेला खड़ा हो और काम करे और अपने मुल्क का कर्ज अदा करना चाहे कि दूसरी हुकूमतों के कर्ज दूर हो जाएं, तो सारे भी सारी जिंदगी लग के काम करके कर्ज अदा करते रहे, इसके बावजूद भी 30 गुना कर्ज बाकी रहेगा उनके सर पे। यानी आप कह लें कि हर बंदे को 30 जिंदगियां भी मिल जाए तो भी वो बड़ी ताकतों के कर्जे अदा नहीं कर सकते, कहाँ वो बेचारे करेंगे। इसी तरह पूरे वर्ल्ड के जो एनालिसिस हैं उसके बारे में आता है कि इस वक्त 1,000 मिलियन लोगों के पास इलाज की सहूलतें नहीं है। दुनिया में एक साल में 2 मिलियन बच्चे जो हैं वो गजा के और सेहत के प्रॉपर इंतजाम ना होने की वजह से मर जाते हैं। 192 मिलियन बच्चे गजा की कमी का शिकार हैं। इसी तरह मिलियन लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता, कितने लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, और 6 बिलियन दुनिया की आबादी है इस वक्त ऑलमोस्ट। 6 में से 1 शख्स ऐसा है पूरी दुनिया में कि जिसके पास घर नहीं, फुटपाथ पे पैदा होता है और वहीं मर जाता है। सारी जिंदगी उसकी एड़ियां रगड़ते हुए गुजरती है लेकिन उसके पास अपने लिए घर नहीं है। एक तरफ देखिए गुर्बत का ये हाल है, अपने मुल्कों की तो हम बात ही नहीं करते, इसलिए कि बात समझ आ जाती है तो उसी को देख लेते हैं। इसके बरक्स अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ तईशात पे क्या लगता है, यूरोप की बात लिखी हुई थी, 11.5 बिलियन यूरो जो है वो एक साल में आइसक्रीम पर खर्च होता है। इसी तरह 1.5 बिलियन अल्कोहल पर इस्तेमाल होता है। यानी एक तरफ इतनी अय्याशी है और दूसरी तरफ भूख का हाल क्या है कि लोगों के पास पीने को नहीं, खाने को नहीं। आप कहते कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा करते हैं कि ये इनको एड्स भी देते हैं। आपने एड का नाम सुना है? एक होती है एड्स, एक होती है एड, मदद। और हमारे मुल्कों में एड मिलने पर इतनी खुशियां मनाई जाती हैं जितनी शायद किसी को कोई फतह हासिल होने पे भी ना मिले। फलां मुल्क से इतनी एड आ रही है। उस एड की भी कहानी है अगर आप सुन लें कि जब कोई बड़ी ताकत किसी छोटे मुल्क को $1 एड में देती है ना, तो उसमें से उस मुल्क को जो मिलता है ना वो सिर्फ 10 सेंट्स है। यानी जो 90 सेंट्स उसके ऊपर हैं वो उस मुल्क के वहाँ के जो कार अमला होता है या उनके खर्चे या आने जाने पे खर्च हो जाते हैं। अखबार में आपने पढ़ा कि फलां मुल्क को $1 बिलियन एड मिली, उनमें से 90% आप निकाल दें, वो उन्हीं के चौंचलों पे, उन्हीं के जहाज़ों के खर्चे, वो करते भी हमारे मुल्कों के काम है और ख़र्चा भी हमारी हुकूमतें देती हैं। और उसके बाद आप देखें जो 10 सेंट्स मिलते भी हैं तो कोई बहुत ईमानदार हुक्मरान होगा तो ये 10 सेंस उस मुल्क को जाएंगे ना। जो आज के ब्यूरोक्रेसी आप सब सुनते ही हैं कहानियां, और आप सोचे कि उस मुल्क को मिलता क्या है, शायद 1 सेंस भी नहीं मिलता, और इसमें भी उनके अपने ही फायदे होते हैं। फिर इसी तरह ये तो कर्जे की और कहानियों की, नहीं एक अजीब कहानी है आप अगर इसमें देखें तो अल्लाह अकबर, यानी ऐसे लगता है कि सांस लेना मुश्किल है। और अल्लाह के नबी की वो रिवायत बहुत ही मारूफ है कि आपने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर बंदा जो है वो सूद के गुबार को अपने अंदर महसूस करेगा, कोई खुद ना भी ले तो जब इर्द गिर्द घुटन होती है तो उसका धुआं अंदर जाता है। इसी तरह एक रिवायत में जिना के बारे में भी आता है, कि एक वक्त आएगा हर एक जिना का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर अपने अंदर लेगा। और आज देखे तो आंखें खुलेआम जिन चीजों को देखने पे मजबूर हो जाती हैं तो वो जिना के इब्तदाई दर्जात होते हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, इसका सामने रखने का मकसद क्या है कि हम देखें कि एक निज़ाम इस्लाम ने दिया था और एक निज़ाम आज की दुनिया ने दिया। अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटीज़ फ्लरिश करती हैं, कामयाब होती हैं, उसमें बहुत वसत आती है, तो फिर दुनिया का ये नक्शा तो नहीं होना चाहिए था। इसका तकाबुल करें दौरे फारूकी के साथ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में वो वक्त आ गया था कि लोग अपनी ज़कात लेकर फिरते, अपने सदका खैरात लेकर फिरते, और कोई उसको वसूल करने वाला नहीं मिलता था। हर बंदा खुशहाल हो गया था। अल्लाह ने जब ये हुक्म दिया ना कि जो तरीक़ेकार मैं तुम्हें कहता हूँ वो इख्तियार करो, तो उसी में खैर है। आप पूरी दुनिया पे घूम जाएं, आप सारे तरीके इख्तियार कर लें, खैर उसी में है जो अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह ने जो निज़ाम दिया था उसको छोड़कर जब हम ये कहते हैं, यानी अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाला एक जुमला हम बोलते हैं, और वो क्या है कि आज के दौर में तो कोई काम इसके बगैर हो ही नहीं सकता। कल ही मुझे किसी ने जुमला बोला कि मुमकिन ही नहीं है घर लेना सूद के बगैर। जब जहन साजी ये हो जाए, पहली बात कारोबार नहीं हो सकता, कैसे करें। इसको भी समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाए ना, आज से 100-200 साल पहले, तो दुनिया में अक्सरियत जो थी वो कारोबार करने वाली थी, बिजनेस माइंडेड लोग थे। लेकिन इस वक्त यूएसए की एक रिपोर्ट थी कि अब वहाँ जॉब करने वाले लोग जो है ना वो बिजनेस करने वालों से ज्यादा हैं, और पूरे उनके निज़ाम को चलाने वाली इस वक्त सिर्फ 200 कंपनीज हैं। यानी इस वक्त आप कह लें 6 बिलियन लोगों में से 200 कंपनीज के हाथ में पूरी दौलत है, और बाकी लोग अब मजबूर हो चुके हैं इस बात पे कि जॉब करें, गुलामी करें। क्यों? क्योंकि थोड़े जो छोटे लोग होते हैं उनके हाथ में तो सरमाया ही नहीं रहता। चंद बड़े लोग मजीद बड़े हो जाते हैं और जो छोटे थे वो बेचारे और छोटे होने लगते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने ये सोच लिया कि आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं। बात कर लेते हैं, मिसाल है कि कारोबार। आप कहते हैं कि आज के दौर में बिजनेस नहीं चल सकते सूद के बगैर और इसके लेन देन के बगैर। फिर दूसरा मसला है कि घर नहीं ले सकते, दे नहीं सकते, तो इस्लाम क्या इसमें भी कोई रहनुमाई करता है कि नहीं करता? चलिए आप पहले बिजनेस को देख लीजिए। अभी तो शुरू हुआ है ना कुरान पाक का सिलसिला, आप आगे जाते जाएंगे आपको इंशाल्लाह कुरान पाक से ही पूरी तिजारत करनी अल्लाह ताला सिखा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, उस वक्त इर्द गिर्द जो कहानियाँ थी जो सारी थी वो सूद पे चलती थी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जब सूद हराम हुआ, उसके बाद उस दौर के जो अमीर तरीन लोग थे वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हो, इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो। कहाँ से मिला उनको पैसा? सिर्फ इस वक्त जो ज़रूरत है ना, फर्स्ट थिंग, कोई बंदा किसी लेवल पे इन मुसीबतों में फंस चुका है ना, सबसे पहली चीज़ यह है कि इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। रियलाइजेशन, इसका एहसास बेदार करने की ज़रूरत है कि वाकई ये गलत है। फिर तमन्ना, ख्वाहिश, उसका अगला दर्जा होता है। ख्वाहिश पैदा होगी कि अल्लाह मैंने इस चीज़ से निकलना है। फिर तीसरी चीज़ इरादा। बहुत बड़ा फ़र्क होता है ख्वाहिश और इरादे के बीच में। हम ख्वाहिशों को इरादे कहते हैं, और पिछले 8 साल से 10 साल से लगे हुए ख्वाहिश को, और कहते हैं कोशिश तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, निकल नहीं रहे इस चीज़ से। नहीं, वो सिर्फ ख्वाहिश है। ख्वाहिश से इरादे के रास्ते में कोशिश होती है। फिर इरादों के बाद स्टेप्स, प्रैक्टिकल स्टेप्स, क्या करें, कैसे करें, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। फिर उसके बाद ऐसी पॉलिसीज़ बने। इस वक्त ये मसला कब हल होगा? फिर बात वहीं आएगी जहां अक्सर बातों की बात आती है। हमारे दौर में ये सोच लिया जाता है कि मुसलमान उनको एक तरफ कर दिया जाए, जंगलों में चले जाएं, बकरियां चराने लग जाएं, कुछ जो हैं वो खेती बाड़ी कर लें और बस रोज़ी रोटी कमा लें। ऐसा हल नहीं है। इस सारी चीज़ों का हल क्या है? मुसलमान, सही सोच रखने वाले लोग जाएं इकोनॉमिक्स में, वो जाएं ऐसी फील्ड्स में, उनके बच्चे वो पढ़ें जहां सब माली मामला चलते हैं, बैंकिंग के मामला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फिर उन सारी चीज़ों में जब वो स्किल्स कायम कर लेंगे, तो फिर उसको कुरान और हदीस की रहनुमाई की रोशनी में एक नए निजाम में डालेंगे। देखिए, एक आम मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा जो 40 हदीसें भी पूरी लिख ले और ये 10 आयतें भी सारी लिख ले, वो दुनिया का निज़ाम नहीं बदल सकता। इसके लिए ज़रूरत है प्रैक्टिकली एक सिस्टम डेवलप करने की, जहाँ जाके सिर्फ ज़ाती तौर पे नहीं, अपने शहर की बात नहीं, मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर ये कहानी जो है वो फैलेगी और वहाँ से ये सिलसिला आएगा। आज अगर हम कुरान पाक पढ़ के इस चीज़ की दिल में तलब और तड़प पैदा कर लेते हैं ना, तो समझें कि इसकी पहली ईंट लग गई। इसके लिए रियलाइजेशन ज़रूरी है। अब आप कहते हैं पूरी दुनिया का तो हम नहीं बदल सकते, तो क्या अपना तो क्या करें? तो पहली बात है, चलें हम ख़वातीन हैं, कारोबार को छोड़ें, घरों की बात करते हैं। आप कहते हैं जी घर नहीं लिया जाता इसके बग़ैर, तो घर लेना लाजमी है। अल्लाह के नबी के कितने घर थे? दूसरी बात, मैं प्रैक्टिकल वाक़या सुनाती हूँ कुछ लोगों के, बल्कि एक शख्स का वाक़या इस बुक में भी लिखा है, अगर मौका मिलता है तो पढ़ के भी सुना सकती हूँ आपको। एक औरत थी, तो उन्होंने कहा कि उनके शौहर ने 5 घर लिए हुए थे और सबकी किस्तें देते थे, और वो सारे ही ऐसे ही थे कि थोड़ी डाउन पेमेंट दे दो, उसके बाद आगे जाओ तो हर महीने किस्तें दो। फिर क्या हुआ कि जॉब चली गई या कोई क्राइसिस आए कि किस्तें ना दे सके, वो 5-6 सारे घर जो थे बैंक ने ले लिए। इसका हल क्या था? 5-6 घर मैंने कहा क्यों लिए थे? कहती सस्ते मिल रहे थे, डील लगी हुई थी, तो मियाँ ने एक लिया, फिर दूसरी और सस्ता मिला वो भी लिया, तीसरा लिया तो वो भी मिल गया। नतीजा क्या हुआ? डूबे तो सारे डूबे। क्या इन 5-6 की जगह जो मनी सारी इधर उधर लगी थी वो जमा होकर एक जगह नहीं जा सकती थी? इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, घर अल्लाह की नेमत है और अल्लाह सबको दे, और वो घर दे कि जिसके बाद अल्लाह भी राजी हो। एक बंदा अगर उसकी इस्तेताद थोड़ी है, मिसाल है कि मुझे कोई ज़्यादा, वैसे सच्ची बता रही हूँ, कीमतों की मालूमात नहीं होती, मैं सिर्फ जस्ट फिगर्स एक मिसाल देने के लिए करती हूँ, क्योंकि आप हंसिएगा ना अगर मैं कोई गलत बात कह दूँ कि कितने का घर आता है और आप ये क्या कह रही हैं। मैं सिर्फ मिसाल देती हूँ, और थोड़ा सा जो मुझे अमेरिका के हालात जो लोगों से पता चलता है उसके मुताबिक है कि बाज़ लोग डाउन पेमेंट में $15,000-20,000 दे देते हैं, और नॉर्मली फिर उसके बाद क्या होता है कि हर महीने $2,000-3,000 की किस्त जाती है। और क्या जी कितने का घर लिया है? अब अगर आप में से किसी का मैथ अच्छा है ना, तो ये फिगर्स नोट करके ज़रा जमा कीजिएगा भाई, कितने का घर लिया है? वो कहते हैं जी हमने लेट्स सी $2,00,000 का लिया है। अच्छा जी ठीक है, पहले क्या दिया डाउन पेमेंट में? $20,000 दिया, कितना रह गया पीछे? 180 होना चाहिए ना। अच्छा फिर क्या है? अब इसके बाद बस हर महीने 2,000 की किस्त देनी है। अब आप में से कोई भी लिख के फौरन देखे कि 2,000 एक महीने के अगर कोई देता है तो 1,80,000 कितनी देर में जाता है? चले अच्छा जी, ये किस्तें कितनी देर देनी है? ये 20 साल देनी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर ये घर पे ऑफ हो जाएगा। आप 20 साल के 12 महीनों को 2 से ज़रब दे के ज़रा भी देख लें कि जिसको आपको कहा गया ना ये 2 लाख का घर है, वो प्रैक्टिकली आपको $7-8 लाख का घर पड़ता है। तो ये हकीकत समझाएं तो कहते हैं फिर क्या है, फिर इतना वक्त भी तो हमें देते हैं ना, है ना? ना समझी की बात, आप इस चीज़ को समझें तो फिर है। ये भी दुनियादारी की बातें, इसको छोड़ दें, आप सोचें कि इसके अंदर नुकसान किसका होता है कि आप जब भी किसी का कुछ ले रहे हैं आप कभी उससे निकल ही नहीं सकते, नस्ल दर नस्ल आप कर्जों में उसको छोड़ रहे हैं।